निर्देशक का वक्तव्य। बात दिसंबर 1970 की है, जब हम अपना नाटक बाकी इतिहास खेलने के लिए केरल गए थे। त्रिचूर के होटल के कमरे में गिरीश ने हैवदन के बारे में विस्तार से बात की थी। नाटक वे लिख चुके थे, लेकिन उसका अनुवाद अभी नहीं हुआ था। नाटक की कथावस्तु बहुत आकर्षक लगी और मैंने नाटक को प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन तब तक यह तय हो चुका था कि कारंत ही इस नाटक का अनुवाद करेंगे और वे ही दिल्ली में इसको प्रस्तुत भी करेंगे। फिर भी नाटक को खेलने का मोह बना रहा। कुछ महीनों बाद संगीत नाटक अकादमी की ओर से एक गोष्ठी हुई, जिसमें परिचर्चा का विषय था पारंपरिक रंगमंच की आधुनिक प्रासंगिकता। इस गोष्ठी में हैवदन की बहुत चर्चा रही। बार बार इस नाटक का उदाहरण दिया गया। कहा गया कि यह नाटक यक्षगान शैली में लिखा गया है। बात बहुत हास्यप्रद थी, क्योंकि तब तक नाटक का अनुवाद ही नहीं हुआ था और स्पष्ट था वे लोग जो इसका उदाहरण दे रहे थे उन्होंने सरसरी तौर पर ही नाटक के बारे में सुन रखा था। गोष्ठी के बाहर जो मित्रों की गोष्ठियां हुई, उनमें मैंने गिरीश से यह पूछा, क्या वाकई हैवदन यक्षगान शैली में लिखा गया है? तो उन्होंने उसकी शैली के बारे में विस्तार से बात की। यक्षगान के दो तत्व इस नाटक में जरूर इस्तेमाल किए गए हैं, एक भागवत का चरित्र और दूसरा अर्धपटी हाफ कर्टेन का इस्तेमाल। जहाँ तक भागवत का प्रश्न है, वह सूत्रधार का एक और नाम है, और सूत्रधार सिर्फ यक्षगान में ही नहीं बल्कि हमारी अनेक नाटक शैलियों में होता है। और जहाँ तक अर्धपटी के इस्तेमाल की बात है, तो उसका यक्षगान से अधिक प्रभावशाली प्रयोग कथकली में होता है। वे लोग जो सिर्फ इस कारण हैवदन को बिना पढ़े यक्षगान की शैली में लिखा नाटक मान रहे थे, वे अगर इसको कथकली की शैली में लिखा गया नाटक मानते तो कोई उनका क्या बिगाड़ लेता। उन्हीं दिनों से यह बात मन में घर करती गई कि अगर इस नाटक को कभी प्रस्तुत करने का मौका मिला तो चाहे जिद में ही सही इसे अर्थपटी के इस्तेमाल के बिना प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। एक साल और बीत गया। दिल्ली में दिशांतर की ओर से कारंत के निर्देशन में नाटक खेला गया। उनकी प्रस्तुत में लोक नाटकीय तत्वों पर काफी बल दिया गया था, जिससे प्रस्तुत बहुत ही सजीव और दृश्य रूप में सुखद बन पड़ी। लेकिन मेरा निजी मत यह था कि इस सारे लोक नाटक के वातावरण में नाटक की सूक्ष्मता खो जाती है। इसी कारण से जो धारणा पहले जीत की वजह से बनी थी, अब विचार के स्तर पर पक्की हो गई, और वह यह कि अगर इस नाटक के मूल तत्व को उभारना है तो इस प्रस्तुत में लोक तत्वों पर बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोक तत्वों के होते हुए भी नाटक की सारी संवेदनशीलता वास्तव में बहुत सूक्ष्म और परिष्कृत है। यह विचार तो पक्का हुआ, लेकिन इसके साथ ही इस नाटक को प्रस्तुत करने की आशा भी जाती रही, क्योंकि दिल्ली के थिएटर का या शायद सारे देश के थिएटर का एक दुर्भाग्य है कि जब एक नाटक एक बार हो जाता है तो बहुत वर्षों तक उसी शहर में उसको कोई दूसरी नाटक मंडली या निर्देशक नहीं कर सकता करता। इस स्थिति के कारणों पर बहस करना यहाँ उचित नहीं है। फिर भी इतना तो कह ही दूं कि इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। जब मैं इस नाटक को खेलने की उम्मीद लगभग खो चुका था, तो एक दिन अचानक प्रतिभाजी का कलकत्ते से खत मिला। कि मैं अनामिका के लिए कलकत्ते में एक नाटक प्रस्तुत करूं। कलकत्ते में हैवदन तब तक नहीं हुआ था। उस मनस्थित में नाटक के चुनाव के बारे में सोचने की जरूरत नहीं हुई। फौरन सुझाव दिया कि हैवदन किया जाए। हालांकि मन में एक दो उलझने थीं। पहली यह कि एक दूसरे शहर में अनजान अभिनेताओं के साथ नाटक करना होगा, और दूसरी इस नाटक के संगीत को लेकर, क्योंकि इससे पहले मैंने किसी भी नाटक में गीतों का प्रयोग नहीं किया था। बहरहाल नाटक शुरू करने से पहले यह तय हो गया कि रवि किचलू जैसे अच्छे संगीतज्ञ का सहयोग मुझे प्राप्त होगा। साथ ही सांत्वना ने गिरीश के अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर विशेष रूप से इस प्रस्तुत के लिए गीत लिखे। जून 1972 में कलकत्ते पहुंचा। वहां पहुंचने से पहले प्रस्तुत की रूपरेखा तैयार कर चुका था और उसका आधार वही विचार था कि नाटक को इस तरह से प्रस्तुत करना है कि उसमें लोक तत्वों पर कम से कम बल दिया जाए। इसलिए दृश्य बंध की जो कल्पना की वह ऐसी थी जिसमें अधपति के इस्तेमाल की बिल्कुल जरूरत नहीं रही। दृश्य बंध कुछ इस प्रकार था। तीन गतिशील स्तंभों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। हर दृश्य के बाद दो अभिनेता ही संगीत और रीतिबद्ध गतियों के साथ इनके स्थान को बदलते थे और हर दृश्य में एक मंच एक नया रूप धारण कर लेता था। और जब इनको एक कतार में रखा जाता तो इनसे बिल्कुल वही काम लिया जा सकता था जो नाटककार ने नाटक में अर्धपटी से लिया था। प्रस्तुत की दृष्टि से नाटक की एक समस्या देवदत्त और कपिल के मुखौटों के संबंध में है। गिरीश ने नाटक में इस बात की कल्पना की है कि जब देवदत्त और कपिल के सिरों की अदला बदली होती है तो उनके मुखौटे बदल दिए जाएं। मालूम नहीं उनको यह क्यों नहीं सूझा कि मुखौटे बदलने पर भी आवाज नहीं बदली जा सकती। और शायद यही एक कारण रहा होगा कि हम तीनों कारंत, दुबे और मैं ने इस समस्या को एक ही ढंग से सुलझाया। मुखौटे बदलने के बजाय देवदत्त और कपिल वेशभूषा बदल लेते हैं। उससे बिल्कुल वही प्रभाव पैदा होता है जो नाटक की मांग है। जब इस समस्या का यह हल हो गया तो इन दो चरित्रों के लिए मैंने मुखौटे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं समझी। हाँ, काली गुड़िया और हयवदन के चरित्रों के लिए मुखौटों का इस्तेमाल किया गया। एक बड़ी समस्या शुरू में ही उठी। नाटक की दृष्टि से यह जरूरी था कि भागवत का रोल करने वाला अभिनेता अच्छा गाने वाला भी हो, लेकिन सारी मंडली में कोई ऐसा अभिनेता नहीं था। इस समस्या का हल यह निकाला गया कि सारे गाने एक कोरस के जिम्मे सौंप दिए जाए। मंच चूंकि बहुत छोटा था इसलिए इसको दोनों तरफ से प्रेक्षागृह के अंदर बढ़ाया गया। एक तरफ बैठे वाद्य वृंद के साथ गायक और दूसरी तरफ भागवत और उनकी मंडली। ये दोनों स्थान मुख्य मंच से बिल्कुल अलग थे, पर इसके बावजूद भागवत बहुत आसानी से मुख्य मंच पर आ जा सकता था। कलकत्ते के एक समीक्षक ने मेरी प्रस्तुत पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, प्रस्तुत में आवश्यकता से अधिक गंभीरता आ गई। यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि किसी भी निर्देशक के लिए हयवदन चरित्र के उपाख्यानों में गंभीरता का समावेश करना संभव नहीं है और न ही मैंने कोई ऐसी कोशिश की थी। जाहिर है इस समीक्षक का इशारा देवदत्त कपिल पद्मिनी की कहानी की ओर था, लेकिन इस कहानी के बहुत से अंश तो सिर्फ गंभीर रूप से में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विशेष रूप से इन तीनों की कहानी का अंत जहां पद्मिनी सती होने की तैयारी करती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी प्रस्तुत में अगर काली के उपाख्यान को इतनी गंभीरता से प्रस्तुत न किया जाता जैसा कि किया गया था तो शायद बेहतर होता, लेकिन सारे नाटक को एक ही मूड में प्रस्तुत करना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि नाटक एक मूड का नहीं है। अंत में दर्शकों की एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया का भी जिक्र कर दूं कि बहुत से दर्शकों को पद्मिनी, कपिल, देवदत्त की कहानी और हयवदन के उपाख्यान जुड़े हुए नहीं लगते। हालांकि जब मैंने यह नाटक पढ़ा था मुझे ऐसा नहीं लगा। शायद यह इस नाटक की एक समस्या है। राजेंद्र नाथ।